समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट रम्या। रम्या, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लवली लिसनर्स हू हैव ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम रम्या एंड विथ मी टुडे इज माय लवली को होस्ट आकर्षिता, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट डेडलाइन इंडिया, रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। We begin with the news headlines first, आकर्षिता।
जी, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज 9 निर्वाचित सांसदों की शपथ के साथ शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली।
प्राइम मिनिस्टर सेज हिज गवर्नमेंट ऑलवेज स्ट्राइव्स टू टेक एवरीवन अलोंग, बिल्ड कंसेंसस टू सर्व द कंट्री एंड फुलफिल पीपल्स एस्पिरेशंस।
मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक पश्चिमी तटों पर बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया।
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says intense phase of fighting in Rafah nearly over. Reiterates war would continue until Hamas is completely uprooted.
और T20 पुरुष विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत आज शाम सेंट लूसिया में सुपर 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा।
And now, listeners, it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today, we will talk about International Day for Women in Diplomacy. Eleanor Roosevelt rightly said that a woman is like a tea bag. You can't tell how strong she is until you put her in hot water.
कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 24 जून को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 20 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी, ताकि ये पुष्टि की जा सके कि पुरुषों के साथ समान स्तर पर और निर्णय लेने के सभी स्तरों पर महिलाओं की भागीदारी सतत विकास, शांति और लोकतंत्र को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया को महिला राजनयिकों के काम को पहचानने और उनकी सराहना करने का अवसर प्रदान करता है।
टुडे वी सेलिब्रेट द ट्रेल ब्लेजर्स, द वुमेन हु नेगोशिएटेड पीस एग्रीमेंट्स एंड स्ट्रेंथन्ड इंटरनेशनल रिलेशंस इन होप ऑल्सो टू इंस्पायर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वुमेन टू परस्यू डिप्लोमेसी एज अ करियर ऑप्शन।
कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन महिलाओं को धन्यवाद कहने का एक तरीका है जिन्होंने कूटनीतिक भूमिकाओं में बदलाव किया है। उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करके हम ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम उठाते हैं कि लिंग की परवाह किए बिना सभी को दुनिया को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण निर्णयों का हिस्सा बनने का उचित मौका मिले।
Globally, women's underrepresentation in decision-making remains as a stark reality, according to UN Women's Global Data on Women Political Leaders 2024.
वर्ष 2023 तक 31 देशों में 34 महिलाएं राष्ट्राध्यक्ष या सरकार के प्रमुखों के रूप में काम कर रही थी, और ये पाया गया था कि शासन और कूटनीतिक मुद्दों के मामलों में महिलाओं की भागीदारी बेहतर परिणामों में मदद करती है। उनके द्वारा पारित कानून आम जनता और पर्यावरण के लिए अधिक लाभकारी प्रतीत होते हैं। कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस दुनिया में अधिक लैंगिक समानता लाने में मदद करने के लिए महिलाओं की इन शक्तियों का जश्न मनाता है।
A staggering 113 countries worldwide have never had a woman serve as head of state or government, and only 26 countries are led by a woman as of today. As of 1st of January 2024, only 23% of ministerial positions are held by women, and in 141 countries, women make up less than a third of the cabinet ministers. 7 countries have no women representation in their cabinets. at all, and that is such a surprising thing. We are living in 2024, Akarshita, and this is the statistics that we are getting to read now.
जी, और आज हम वरिष्ठ राजनयिकों पदों पर महिलाओं के लगातार कम प्रतिनिधित्व की ओर ध्यान खींच रहे हैं, कूटनीति में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को इंगित कर रहे हैं और उन बाधाओं पर भी चर्चा कर रहे हैं जिन्हें अभी भी दूर करने की आवश्यकता है.
जी, टुडे वी हाईलाइट दैट देयर आर स्टिल स्ट्रक्चरल इश्यूज दैट इम्पीड द प्रमोशन ऑफ वुमेन टू सीनियर रोल्स विद इन देयर मिनिस्ट्रीज ऑफ फॉरेन अफेयर्स. एट द सेम टाइम वी ब्रिंग टू अवेयरनेस द लेस टैंजिबल बट इक्वली हार्मफुल इनफॉर्मल रूल्स एंड कल्चरल डायनामिक्स दैट ऑपरेट अंडर डीपली रूटेड सोसाइटल लेगेसीज ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज टू प्रिवेंट इक्वली क्वालिफाइड वुमेन कैंडिडेट्स from reaching top positions in diplomacy to this very day. And Akarshita, this is such an important thing that has been stated, that there are some things which are in the mindset. कुछ चीजें दिमाग में रहती हैं. आप एक ही काम करें, महिला या पुरुष, पर सैलरी पुरुष को ज्यादा मिलती है, महिला को कम मिलती है. और अगर वो कुछ लीव पे जाए तो उसको बोल बोल कर दिखाते हैं, हाँ आप तो महिला हैं, आपको तो छुट्टी मिलेगी.
जी, जी.
तो ये पॉलिटिकल में और भी ज्यादा, क्योंकि पॉलिटिक्स तो बहुत ही मुश्किल जगह है सर्वाइव करने के लिए, उसमें ऐसी चीजें तो और भी ज्यादा होती हैं.
और रम्या, जो आज की जटिल सामाजिक चुनौतियां हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है और महामारी है, मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात है, शांति बनाए रखने की बात है, या मुद्रास्फीति या आर्थिक अनिश्चितता भी जो है, और हम जानते हैं कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो एक फीमेल है, तो ये सारी जो सामाजिक चुनौतियां हैं उनका जो समाधान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि महिला नेताओं को समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता और लैंगिक समानता के सिद्धांतों को एकीकृत नहीं किया जाता. और ऐतिहासिक रूप से कूटनीति पर पुरुषों का ही प्रभुत्व रहा है, पर आज ये मौका है कि हम महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दें, जिससे हर क्षेत्र में सही मायनों में समान और अभूतपूर्व कूटनीतिक बदलाव आ सके. क्योंकि रम्या, जैसा कि हम जानते हैं कि जो महिलाओं के मुद्दे हैं उस पर अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो एक महिला प्रतिनिधि ही बहुत अच्छी तरीके से ले सकती है.
बिल्कुल बिल्कुल. Advocating for increased representation of women in key decision-making positions will greatly shape and implement multilateral agendas. Women have participated in diplomacy for centuries, yet their contributions have often been overlooked. Between 1992 and 2019, women represented 13% of negotiations, 6% of mediators, and 6% of signatories in peace processes worldwide.
जी, और एक मिशेल ओबामा का एक कोट से मैं ये खत्म करूंगी रम्या, कि कोई भी देश कभी भी वास्तव में फल फूल नहीं सकता अगर वो अपनी महिलाओं की क्षमता को दबा देता है और अपने आधे नागरिकों के योगदान से खुद को वंचित कर लेता है. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
सो आकर्षिता, मैं आपको ले जाती हूं लद्दाख. सो इन लद्दाख, सिंधु दर्शन फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर 3 days सिंस यस्टरडे. द इनॉग्रल सेरेमनी ऑफ द फेस्टिवल वॉज हेल्ड टुडे, इन विच लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉ बीडी मिश्रा वॉज द चीफ गेस्ट. आवर ले कॉरेस्पॉन्डेंट हैज फाइल्ड अ रिपोर्ट.
Sindhi Darshan Festival is one of the festivals in Ladakh which draws a huge number of tourists from different parts of the country. It is also known as the celebration of cultural diversity of India, as showcase of cultural heritage of different parts of the country are major features of the Sindhu Darshan Festival. The festival started in 1997 by then Deputy Prime Minister L.K. Advani in honor of Indus River, as it gave name to India, and to showcase the country's longest river as symbol of communal harmony and unity of India. The inaugural ceremony of this year's festival has witnessed different events. Spiritual leader of Buddhists, Thugse Rinpoche, conducted Bhumi Puja for the upcoming 87th statue of Lord Buddha on the bank of Indus River at Sindhu Ghat, and LG Dr. B.T. Mishra laid the foundation stone on it. Elaborate cultural program by artists of different states have presented to mark the cultural diversity of India. Yangchen Dolma for Parikrama from Leh Ladakh.
और अब बात करते हैं नागपुर की. महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में हाल ही में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उपस्थिति में आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सलियों के परिवारों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया. आइए सुनते हैं इस विषय पर ये रिपोर्ट.
गढ़चिरौली पुलिस ने नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है, वहीं दूसरी ओर सरकार की विभिन्न योजनाएं जमीनी स्तर तक पहुंच रही है। यह मानव विकास का सर्वोत्तम प्रयास है, ऐसा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। उन्होंने बताया कि
ये एक बहुत बड़ी सफलता पुलिस को और प्रशासन को सरकार को माओवाद के खिलाफ मिली है, क्योंकि गढ़चिरौली में माओवाद के रीढ़ की हड्डी उसको माना जाता था, ऐसे गिरधर और उनकी पत्नी, ये दोनों माओवादियों ने आज मेरे समक्ष आत्मसमर्पण किया है। गिरधर के ऊपर 25 लाख का इनाम था, उनकी पत्नी के ऊपर 16 लाख का इनाम था और पूरे तरीके से गढ़चिरौली के माओवादी गतिविधियों के प्रमुख के रूप में उनको देखा जाता था। एक बड़ा लंबा अरसा इस माओवाद में उन्होंने यहां पर गुजारा है और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके आत्मसमर्पण के कारण माओवाद के रीढ़ की हड्डी को एक प्रकार से तोड़ने का काम हमारी पुलिस ने बहुत सफलता के साथ किया है। आज गढ़चिरौली में हम देख सकते हैं कि हमारी जो C60 है उसने ये परिस्थिति निर्माण की है कि माओवादियों को या तो आत्मसमर्पण करना पड़ेगा या फिर परिणामों को भुगतना पड़ेगा और पिछले 4 सालों में एक भी व्यक्ति गढ़चिरौली से माओवादी इस एक्टिविटी में सम्मिलित नहीं हुआ है, अब उनकी कोई भर्ती यहां पर नहीं होती है।
आत्मसमर्पित नक्सली और नक्सलियों के परिवारों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सरकार की विविध योजनाओं के तहत सामग्रियों का वितरण उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस समर्पित महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सिलाई मशीन बांटी गयी तथा नक्सली परिवारों के लिए कृषि सामग्री, स्प्रे पंप, धान बीज बांटा गया। कार्यक्रम में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली दंपत्ति नांगू मनकू तुम रेट्टी उर्फ गिरधर, उसकी पत्नी संगीता उर्फ ललिता उसेंडी को पुनर्वास के लिए 25 लाख की सहायता दी गई। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हेमांगी कुलकर्णी।
आकर्षिता, आप जानती हैं अभी हमने इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया था 21 जून को, एंड योगा हैज बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स द पॉपुलैरिटी ऑफ योगा हैज रीच्ड टू इंटरनेशनल स्टेज, बट इन गुजरात योगा हैज बीन पॉपुलर सिंस एजेस। इट वॉज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड योगा यूनिवर्सिटी। अ रिपोर्ट फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट अपर्णा।
योगा हैज बीन आवर लेगेसी, बट नॉट ऑल अंडरस्टैंड व्हाट योगा इज। Talking to Akashwani, the head of department of Lakulish University, the first yoga university of Gujarat, S. Nagarajan said, yoga is beyond exercise. He said yoga has proved effective in curing physical as well as mental health concerns.
अभी पिछले 10 सालों में योग के प्रति लोगों का एक जो लगाव है, उसके प्रति जो इंटरेस्ट है, वो काफी बड़ा है। इसमें एक बहुत ही यूनिक क्वालिटी है योग में, वो है अवेयरनेस। ये योग जो है आपके शरीर और मन दोनों को जोड़ने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव टूल साबित हुआ है।
He said the youths of the country should not only adopt yoga for self-development but also contribute in popularizing yoga. He said yoga can be a good career choice for the youths in today's times.
Yoga ko pehle ke zamane mein sadhana ke liye log use karte the, jo samadhi prapti karna hi ek matra uddesh hota tha. Uske baad log self practice, matlab jo health conscious log the, apne practice ke liye hi karte the. Abhi corona ke baad to health awareness bahut hi acha badh gaya har jagah aur Modi ji ke इंटरनेशनल योगा डे अनाउंस करने के बाद तो और भी ज्यादा लोगों का इंक्लिनेशन बढ़ा है। इसके लिए जो योगा प्रैक्टिस करने की इच्छा है उसको फुलफिल करने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूट्स ने एकेडमिक प्रोग्राम्स भी शुरू किया है।
आफ्टर द कंसिस्टेंट एफर्ट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, योगा हैज गेन्ड वाइल्ड पॉपुलैरिटी ऑन इंटरनेशनल स्टेज, विच इज हेल्पिंग इंडिया इन स्ट्रेंथनिंग इट्स कल्चर एट ग्लोबल स्टेज। फॉर परिक्रमा, दिस इज अपर्णा खून, आकाशवाणी न्यूज, अहमदाबाद।
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
We remember nationalist historian Vishwanath Kashinath Rajwade, who was born on the 24th of June 1863 in Raigarh district of Maharashtra. Popularly known as Itihasacharya Rajwade, Vishwanath is considered to be one of the first historians to undertake an immense research of glorious Maratha history by visiting hundreds of villages and historical places all over India. He was greatly influenced by scholarly teachers like Ramakrishna Gopal Bhandarkar, Vishnu Shastri Krishna Shastri Chipurunkar, lexicographer Parshuram Tatya Godbole, and Kavya Itihas Sangrahkar Sane. However, he was a big critic of the model of higher education in India, which, according to him, did not help original thinking or research.
Rajwade did not seek British employment, which he considered was indirect slavery.
He started translating world classics in Marathi and started a monthly called Bhashantar. Through the magazine, he brought works of Western philosophers and scholars such as Plato, Aristotle and Edward Gibbon, and also Indian scholars like Shankaracharya in Marathi.
Rajwade was a rare combination of a researcher, history grammarian, social scientist and etymologist. He was unhappy with Maratha history books written by British historians that tried to establish conqueror's view of subjugated people. Rajwade wanted to present an unbiased point of view. To this end, he toured the whole of Maharashtra region and studied art, architecture, iconography, social life, language, literature, customs and folk traditions of the region. He published 22 volumes of Marathancha Itihasachi Sadhane, Sources of the History of Marathas.
He got the oldest commentary on Gyaneshwari and brought out its earliest grammatical form. He edited Radha Madhav Vilas Champu by Jayaram Pindye, dating to Chhatrapati Shivaji's father's time, which has special bearing on the history of contemporary Karnataka. He explored etymology, the study of the origin of words, and discovered several old rituals and practices.
In 1910, Rajwade founded Bharat Itihas Sanshodhak Mandal at Pune and kept all his works and historical papers in the custody of the Mandal. A sage-like scholar known for austere habits and long hours of work and incessant travelling, Rajwade died on the 31st of December, 1921. AIR News salutes the great nationalist. We also remember Martyr Ranjit Singh, who was born on the 24th of June 1924 at Ludhiana, Punjab. Initially, Singh served in the British Indian Army, but joined the Indian National Army in 1942 in Singapore and served as sepoy in the Gandhi Brigade. Ranjit Singh confronted the Allied forces in Arakan, Myanmar and died fighting them in 1944.
We also remember Kamruddin Khan, who participated in the First War of Indian Independence.
Khan was captured by company troops in the course of their attacks and put on trial for aiding and abetting the rebellion against the British. He was sentenced to imprisonment for 10 years with hard labor in iron. Kamruddin Khan died in captivity on the 24th of June 1859 in the Andaman Islands. We salute the brave son of the soil.
Welcome back, listeners. You're listening to Parikrama on 100.1 FM. Now it's time for some business news. Indian benchmark indices ended higher in a volatile session. After a weak start, the market saw recovery in the initial hours and turned positive in the first half. At close, the 30 stock index Sensex was up 131 points or 0.17% at 77,341 and the Nifty gained 37 points or 0.16% at 23,538. The BSE mid-cap and small-cap indices added 0.3% each. In the forex market, the rupee appreciated 7 paise to trade at 83 rupees and 46 paise against the US dollar. And in intraday trade today, Brent crude was trading at $85.47 per barrel.
और श्रोताओं अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज सुपर 8 मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से सेंट लूसिया में खेला जाएगा। आज सुबह एंटीगुआ में बारिश से प्रभावित एक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया।
In EuroCup 2024, Germany and Switzerland faced off in a thrilling Group A match in Frankfurt. Niklas Füllkrug scored deep into stoppage time to rescue a 1-1 draw for Germany. Füllkrug's dramatic strike ensured Germany topped Group A, while Switzerland advanced as the runners-up. Both teams showed resilience, but it was Füllkrug's last-minute goal that sealed Germany's top spot in the group. Switzerland's strong performance secured their place in the next round as well.
और अब समय है उन हस्तियों को याद करने का जिनका आज है जन्म दिवस या जिन्होंने आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। इस क्रम में सबसे पहले हम याद कर रहे हैं पंडित श्रद्धाराम शर्मा को। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, किंतु एक ज्योतिषी के रूप में उन्हें वे प्रसिद्धि नहीं मिली जो इनके द्वारा लिखी गई अमर आती ओम जय जगदीश हरि के कारण मिली। संपूर्ण भारत में पंडित श्रद्धाराम शर्मा द्वारा लिखित ओम जय जगदीश हरि की आरती गाई जाती है। श्रद्धाराम शर्मा जी ने इस आरती की रचना 1817 ईस्वी में की थी। पंडित जी सनातन धर्म प्रचारक, ज्योतिषी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संगीतज्ञ होने के साथ साथ हिंदी और पंजाबी के प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। अपनी विलक्षण प्रतिभा और ओजस्वी वाक्पटुता के बल पर उन्होंने पंजाब में नवीन सामाजिक चेतना एवं धार्मिक उत्साह जगाया था, जिससे आगे चलकर आर्य समाज के लिए पहले से निर्मित एक उर्वर भूमि मिली। उनकी गिनती 19वीं शताब्दी के श्रेष्ठ साहित्यकारों में होती थी। अपनी विलक्षण प्रतिभा और ओजस्वी के बल पर उन्होंने पंजाब में नवीन सामाजिक चेतना एवं धार्मिक उत्साह जगाया, जिससे आगे चलकर आर्य समाज के लिए पहले से निर्मित उर्वर भूमि मिली। उनका लिखा उपन्यास भाग्यवती हिंदी के आरंभिक उपन्यासों में गिना जाता है। पंडित श्रद्धाराम शर्मा गुरुमुखी और पंजाबी के अच्छे जानकार थे और उन्होंने अपनी पहली पुस्तक गुरुमुखी में ही लिखी थी, परंतु वे मानते थे कि हिंदी के माध्यम से इस देश के ज्यादा से ज्यादा लोग तक अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने अपने साहित्य और व्याख्यानों से सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सत्य धर्म मुक्तावली, शातोपदेश, सीखन दी राज दी विथिया, पंजाब बातचीत, भाग्यवती, सत्यामृत प्रवाह आदि। आइए सुनते हैं उनका लिखा हुआ ये गीत। Today we are remembering musical maestro M.S. Vishwanathan on his birth anniversary. An Indian music director, singer and actor, he predominantly worked in Tamil film industry. Popularly known as Mellisai Mannar or the King of Melody, he composed songs for more than 800 Indian films and various albums across languages, primarily in Tamil, Malayalam and Telugu films. He also acted and sung in a few Tamil films. But the beginning of his glorious life was anything but happy. MSV was from a Palakkad family. His father died when he was just 4 years old, and his mother decided to kill him, his sister and herself as an escape from abject poverty and lack of support. He was saved at the last minute by his grandfather. His grandfather, Krishnan Nair, was a warden at the central jail of Kannur. After the death of his father, his family moved from Palakkad to Kannur to stay with his jailer uncle. As a child, he sold refreshments in a movie theatre without any pay, so he could listen to the music in the films. He had a part in the film Kannagi, produced by Jupiter Pictures. He would often play truant from school and stand outside the house of Neelakanta Bhagavathar, a local music teacher, and listen to his teaching to other students. He learned to play the harmonium, and Neelakanta Bhagavathar, who heard him play and sing on Vijayadashami Day, was impressed and organized a 3-hour concert at the Kannur Town Hall. And from there, he found his footing in music. Although he wanted to become an actor, he wasn't very successful and realized his true passion was for music. He was discovered by M.G. Ramachandran and his musical journey began with Panam, a 1952 film. He also did playback singing, including 500 songs composed by himself and over 200 songs composed by music directors. Let us listen to one of the songs composed by him, Rajavin Parvai.
மீது ஒருவர் சாய்ந்து கூடம் போலே ஆடலாம் ஆடலாம் ஒருவர் மீது ஒருவர் சாய்ந்து கூடம் போலே
आज पंडित ओमकार नाथ ठाकुर की जयंती है। उनका जितना प्रभावशाली व्यक्तित्व था उतना ही असरदार उनका संगीत भी था। एक बार महात्मा गांधी ने उनका गायन सुनकर टिप्पणी की थी कि पंडित जी अपनी मात्र एक रचना से जनसमूह को इतना प्रभावित कर सकते हैं जितना मैं अपने अनेक भाषणों से भी नहीं कर सकता। उन्होंने एक बार सर जगदीश चंद्र बसु की प्रयोगशाला में पेड़ पौधों पर संगीत के स्वरों के प्रभाव विषय पर अभिनव और सफल प्रयोग किया था। जब वे सूरदास का पद मैं नहीं माखन खायो मया मुरी गाते थे तो पूरे श्रोता समुदाय की आंखें आंसुओं से भीग जाती थी। इस पद को गाते समय पंडित जी साहित्य के सभी रसों से साक्षात्कार कराते थे। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर की कालजयी रचनाओं में एक महत्वपूर्ण रचना है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये अमर रचना स्वतंत्र भारत के प्रथम सूर्योदय पर पंडित जी के स्वरों से अलंकृत होकर रेडियो से प्रसारित हुई थी। आगे चलकर वंदे मातरम गीत के आरंभिक दो अंतरों को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रगीत के समकक्ष मान्यता प्रदान की थी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत मातंड, संगीत महामहोदय पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
Today we are remembering Kavi Isai Karnadasan, an Indian philosopher, poet, lyricist, producer, actor, scriptwriter and philanthropist. He is heralded as one of the greatest and most important lyricists in India. Frequently called Kavi Arasya, with over 5,000 lyrics, 6,000 poems and 232 books, he is widely known as the King of Poets and he is considered to be the greatest modern Tamil poet after Subramanyam Bharathi. He includes his work as novelist, epics, plays, essays and his most popular being a 10-part religious book on Hinduism called Arthamulla Hindu Madam. He won the Sahitya Academy Award for his novel Cheraman Kadali in the year 1980 and he was the first to receive the National Film Award for Best Lyrics in 1969 for the film Kurandai Kaga. Let us listen to this song from the film Karnan, which depicts the death scene of Karna as Krishna sings on to soothe him. India is a curious place that still preserves the past, religions and its history. No matter how modern India becomes, it is still very much an old country. ये पंक्तियां हैं प्रख्यात लेखिका अनीता देसाई की। आज उनका जन्मदिन है। उनका नाम विश्व में अंग्रेजी साहित्य का एक जाना पहचाना नाम है। उपन्यासकार किरण देसाई इनकी पुत्री हैं। भारत सरकार ने अनीता देसाई को पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। अनीता देसाई का पहला उपन्यास क्राई द पिकॉक 1963 में प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही उन्हें बुकर पुरस्कार के लिए 3 बार अंतिम सूची में भी चयनित किया जा चुका है। Yes, in 1993, she became a creative writing teacher at Massachusetts Institute of Technology. And as a writer, she has won Sahitya Academy Award in 1978 for her film, for her novel, Fire on the Mountain. And I think now it's time for us to conclude our parikrama session.
जी जी और श्रोताओं जी 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 और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और रम्या को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। साथ ही आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी हमारे कार्यक्रम 24 घंटे सुन सकते हैं। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया nfu.nsd@nic.in पर भी दे सकते हैं।
नमस्कार।
नमस्कार।